आठ माइनस टू एस्टरिस्क द 20th of August शनिवार उज्जैनी नगरी में एक करोड़पति सेठानी भद्रा रहती थी। उसके एक पुत्र था गुणसागर, धर्मनिष्ठ थी, देव गुरु धर्म में अपूर्व श्रद्धा रखती थी। अपने बच्चे में धर्म के संस्कार पड़े इस हेतु वो समय समय पर अपने बच्चे को धर्म शिक्षाएं देती रहती थी। एक दिन जब सेठानी का पुत्र गुणसागर भोजन कर रहा था, उस समय सेठानी बोली कि बेटा, बासी भोजन खाने में क्या मजा है। यह बात सुनकर पुत्र को पूर्व की स्मृति हो आई कि माँ ने मुझे कई बार इस बात को कहा है, आखिर इसका मतलब क्या है। यह सोचकर पुत्र माँ से बोला, माँ, मैं बासी भोजन कहाँ खा रहा हूँ, बल्कि यह भोजन तो आज का बनाया हुआ ताजा है। नहीं पुत्र, यह भोजन तो बासी है। माँ, बासी भोजन से क्या मतलब? माँ ने कहा, तुझे इसका सही मतलब समझना है तो नगर के बाहर एक ज्ञानी मुनिराज आए हुए हैं, तू उनके पास जा, वो तुझे समझा तू देंगे। बेटा मुनिराज के पास गया, उनको वंदन करके बोला, गुरुदेव, मेरी माता कहती है बासी भोजन खाने में क्या मजा है, कृपा करके मुझे इसका अर्थ समझाइए। करुणा के सागर गुरुदेव बोले, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, माँ के शब्दों में हुआ है। इसे समझने के लिए यहाँ से बहुत दूर चंपापुरी नगरी में जाना, वत्स को अर्थ छिपा होगा। वहाँ श्वपाक पुत्र चेतक नामक एक हरिजन रहता है, तू उसके पास जा, वो तुझे इसका सम्यक अर्थ समझाकर तेरा सही समाधान करेगा। बेटा गुणसागर घर आया, माता की आज्ञा लेकर चंपापुरी नगरी के लिए रवाना हुआ। चंपापुरी नगरी पहुँचा, कई लोगों से पूछते पूछते प्रमुख द्वार के निकट पहुंचा। वहां एक सेठ की दुकान थी, वहां बहुत भीड़ देखकर सोचा, यहां चेतक हरिजन भाई का पता चल जाएगा। सामान देने में कोई व्यस्त, सेठ के बाल व दाढ़ी खूब बड़े हुए थे, ऐसा लगता जैसे जिंदगी में कभी कटे ही न हो। दांत गंदे पीले व सड़े हुए थे, शरीर काला कलूटा था, कपड़े पुराने व फटे हुए, कुल मिलाकर किसी भिखारी से कम नहीं था, पर वो सेठ 4 करोड़ का मालिक था। सेठ ने उस लड़के से कहा, तुम्हें क्या लेना है? गुणसागर, मुझे कुछ लेना नहीं है। चेतक कहाँ रहता है, आप मुझे उसका ठिकाना बता दीजिए। सेठ थोड़े गुस्से से, जा इतनी देर में तो 2 ग्राहकों को निपटा देता, खैर सीधा चला जा। आगे एक बड़ा सा नगर द्वार है, उसके बाहर एक झोपड़ी है, वही चेतक का घर है। गुणसागर सेठ द्वारा बताए मार्ग पर आगे बढ़ा, बड़ा सा दरवाजा पार करते ही झोपड़ी आ गई। झोपड़ी के पास गया, देखा झोपड़ी अंदर से पक्की व साफ सुथरी है, सामने एक आदमी बैठा है। गुणसागर उस आदमी के पास पहुंचा और पूछा, चेतक कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो आदमी स्वयं ही चेतक था, उसने कहा है, तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए? चेतक, मेरा ही नाम गुणसागर, ने माँ व मुनिराज द्वारा कही सारी बातें बताई व आने का प्रयोजन भी बताया। चेतक समझ गया कि यह मेरा साधर्मी भाई है, इसके गुरु वही है जो मेरे गुरु हैं। चेतक बोला, आप मेरे साधर्मी भाई हैं, दूर से आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। लड़का विचार में पड़ गया, यह साधर्मिक भाई जरूर है, पर है तो आखिर जाति का और मैं बनिया हूँ, सेठ का लड़का हूँ, इसके घर का भोजन कैसे करूँ? चेतक अनुभवी व समझदार आदमी था, वो तुरंत गुणसागर की मनोभावना समझ गया और बोला, मेरे घर का मत खाना, मैं तुम्हें दुकान से सामान दिला दूंगा, आप स्वयं खाना बना लेना या फिर चलो किसी सेठ के घर खाना खिला देता हूँ। घर आए अतिथि का सत्कार करना मेरा कर्तव्य है, अतः आपके भोजन का पैसा मैं दूंगा, बोलो यह तो आपको मंजूर है? गुणसागर बोला, ठीक है। चेतक लड़के को साथ लेकर उसी पहले वाले कंजूस मोदी जी धनपाल सेठ की दुकान पर आया। उस चेतक ने सेठ से कहा, 4 रुपए ले लो और हमारे मित्र वणिक गुणसागर को अपने घर पर भोजन करा दो। इतना कहकर वह 4 रुपए देकर चला गया। ग्राहकों की भीड़ छटने के बाद सेठ गुणसागर को अपने घर ले आया। सेठ ने अपनी पत्नी के पास जाकर पूछा, जल्दी से जल्दी क्या भोजन बनता है? सेठानी ने कहा, कड़ी और रोटी। सेठ ने सेठानी से कहा, तो बना दो और बाहर खड़े आदमी को जिमा दो और कुछ मत बनाना। सेठ ने बाहर आकर लड़के से कहा, तुम अंदर जाकर जीम लो। पुनः दुकान पर चला गया। गुणसागर भी चेतक का आतिथ्य सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हुए अंदर चला गया। सेठानी सुशीला हृदय से कोमल व उदार थी। उसने पूछा, बोलो क्या जीमना चाहते हो? लड़का, जो भोजन जल्दी बन जाए वही जीम लूंगा। लड़का बैठ गया और सेठानी भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते सेठानी ने सहज ही पूछ लिया, बच्चे तुम कहाँ के निवासी हो? गुणसागर ने अपना परिचय दिया तथा आने का प्रयोजन भी बताया। लड़के का परिचय पाकर सेठानी बहुत खुश होते हुए बोली, अरे तू तो मेरे काका पुण्यपाल का पुत्र है, मेरा तो भाई लगता है। मैंने विवाह के बाद कभी मायके का मुंह नहीं देखा, आज अचानक तू मेरे घर आ पहुंचा, आज मुझे बहुत खुशी हुई है। तू थोड़ी देर रुक, मैं तेरे लिए अच्छा सा भोजन बनाती हूँ। लड़के ने कहा, आज तो मैं अपने साधर्मी भाई का ही भोजन करूँगा, कल तुम्हारे यहाँ जीम लूंगा। बहन ने खाना बनाया, भाई ने फटाफट खाना खाया। खाना खाकर वो चेतक के घर जाने को रवाना हुआ तो बहन ने कहा, भाई रही है, भाई रात हो तुम यहीं रात्रि विश्राम कर लो, सुबह चले जाना। लड़के ने सोचा, बात तो सही है, रात को वहाँ कहाँ सोऊंगा, यहीं सो जाता हूँ। रात्रि विश्राम करके लड़का सवेरे जल्दी जल्दी उठा, चेतक के घर पहुँचा। वहाँ उसने विचित्र प्रकार का दृश्य देखा। चेतक के घर के बाहर 10-15 आदमी उदास खड़े थे। कुछ लोग रो रहे थे, औरतों की रोने की आवाज अंदर से आ रही थी। यह सब हाल देखकर लड़के ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई, सब क्यों रो रहे हैं? चेतक भाई कहाँ है? बैठे लोगों में से एक ने बताया, कुछ घंटे पहले उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर लड़का अत्यंत गंभीर विचार में पड़ गया। सोचने लगा, मेरे प्रश्न का उत्तर रह गया, मगर किसी से कुछ कहे बिना चुपचाप अपनी बहन के घर लौट आया। बहन के पास बैठकर इधर उधर की बातचीत की और कहा, आज तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूँगा। बहन ने अपने भाई के लिए घेवर बनाने का विचार किया। उसने अपने पति से कहा, वर्षों बाद आज मेरा भाई आया है, उसके लिए घेवर बनाऊंगी। यह सुनकर अति कंजूस सेठ को तीव्र गुस्सा आया और पत्नी से कहा, मेरा भाई 12 वर्ष में एक बार एक समय के लिए आया था, तो भी मैंने उसे पानी भी नहीं पिलाया और तुम अपने भाई के लिए घेवर बनाएगी? क्या मेरा धन ऐसे ही लुटाने को है? कभी नहीं, तू घेवर नहीं बना सकती, घेवर तो क्या उसे खाना भी नहीं खिला सकती। अपना तो सिद्धांत है, जो पैसा दे वही यहाँ भोजन करेगा। खबरदार, यदि तुमने भोजन कराया तो फिर मेरे जैसा कोई बुरा नहीं होगा। सेठानी ने एक दो बार प्यार से कहा, पर सेठ नहीं माने। आखिर सेठानी ने पड़ोस के घर से सामान लाकर भाई के लिए घेवर बनाने लगी। सेठ जी दुकान खोलकर बैठ गए। फिर थोड़ी देर में आकर पूछा, क्या कर रही हो, भोजन बन गया कि नहीं? सेठानी, सब चीजें तो बन गई है, सिर्फ घेवर बाकी है, वह भी जल्दी बनाए लेती हूँ। सेठ यह सुनकर ऊपर से नीचे तक जल भुन गया। क्रोध से कांपते हुए बोला, नीच पापिनी, तू बड़ी खराब औरत है, पति की आज्ञा नहीं मानती। मैंने घेवर बनाने को मना कर दिया, फिर भी तूने मनमानी की। इस प्रकार कहकर सेठ अपने ही हाथों अपनी छाती पीटने लगा। हाय राम, इसने मेरा इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इतना पैसा कमाने में समय लगेगा। इस तरह छाती पीटते पीटते वो वहां से चला गया और एक कमरे में जाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय उसके प्राण निकल गए, सेठानी को पता भी नहीं चला। रसोई घर में भोजन बनाती रही। जब घेवर बनकर तैयार हो गए तो उसने अपने भाई से कहा, जाओ अपने बहनोई जी को बुला लाओ। वो गया और बोला, बहनोई जी चलिए भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। बहनोई जी के तो प्राण निकल चुके थे, तर देता तो कौन देता। आखिर लौटकर बहन के पास आया और बोला, वह तो बोलते ही नहीं। बहन, अच्छा तुम जीमो, मैं जाकर मना लाऊंगी। जाते जाते बहन बोली, देखो भैया, मेरे घर में 4 करोड़ नकद पड़े हैं और लाखों का व्यापार चल रहा है, फिर भी इन्हें संतोष नहीं है। आज घेवर बनाने के कारण इतना क्रोध किया कि पूछो मत। अपनी छाती पीटने लगे, मुझे गालियां देने लगे, ऐसी मुसीबत में पड़ी हूँ कि कहते नहीं बनता। तू ही बता क्या करूँ क्या न करूँ। खैर तुम जीमो, मैं सेठ जी को बुला लाती हूँ। सेठानी गई, आवाज दी पर सेठ उठे नहीं। उसने हाथ पकड़ कर उठाने का प्रयत्न किया, तब उसे पता चला कि सेठ जी तो चल बसे हैं। सेठानी रोती रोती अपने भाई के पास आई और बोली, भाई तुम्हारे बहनाई जी तो हमें छोड़कर चले गए। हाय, अब मेरा क्या होगा, कौन संभालेगा, लाखों का कारोबार यूं ही डूब जाएगा। आगे पीछे और कोई भी तो नहीं है। भाई ने बहन को खूब आश्वासन दिया। उसने कहा, बहन चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होनहार होगा सो होगा। तुम्हारे पास मैं हूँ, जैसा कहोगी वैसा करूँगा, तुम धैर्य रखो। सेठानी बोली, भैया मेरी जन्मपत्री में लिखा है कि मेरे एक पुत्र अवश्य होगा, मुझे भी यही जान पड़ता है। जन्मपत्री संभवतः झूठी नहीं होगी, तब अभी बहनोई जी को जलाना ठीक नहीं है। राजा को पता चल जाएगा तो वो सारा धन अपने अधिकार में कर लेंगे, फिर मैं दर दर पर भटकती फिरूंगी। इसलिए मकान के पीछे जो बाड़ा है उसमें गड्ढा खोद कर इन्हें गाड़ देना चाहिए। सेठानी फिर बोली, तू कम से कम 3 महीने तक यहीं रुकना, अगर मालूम हो जाए कि मैं गर्भवती हूँ तो। अधिक दिन रुक जाना, गर्भवती न हुई तो तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना। अर्थव्यवेश भाई ने बहन की बात मान ली और वहीं रुक गया। धीरे धीरे समय बीता तो भाई को मालूम हुआ कि बहन गर्भवती है, तब वो अधिक समय के लिए रुक गया। बहन का व्यापार धंधा संभालने लगा। आखिर प्रसव का समय सन्निकट आ गया। अब बहन ने भाई से कहा, भैया नाइन को बुला लो। भाई नाइन को लेकर घर में प्रवेश किया ही था कि बच्चा जन्म लेकर बोल उठा, मामा मामा मामा। यह शब्द सुनते ही सेठानी ने अपने भाई को पास बुलाया। उसके आते ही लड़के ने कहा, मामा जिस चेतक के पास तुम आए थे उसकी औरत ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। भूख से पीड़ित वह जन्म देने वाली महत्रानी अधिक पुत्रों के कारण तथा अन्न की कमी से व्याकुल बनकर अपने ही पुत्र को छुरा लेकर मारने की तैयारी में बैठी है। तो आप 100 रुपए और दुकान से अजवान, सूंट, गुड़, घी आदि जापे का सामान लेकर जल्दी उसके घर जाओ और उस बालक को बचाओ, नहीं तो वो उसे मार डालेगी। नवजात शिशु के मुख से ऐसी स्पष्ट व गुप्त बात सुनकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु चुपचाप बालक की रक्षा के निमित्त उसी समय चल पड़ा। उसने जाय की सामग्री के साथ रुपए ले जाकर दिए और कहा, बच्चे को मत मारना, आवश्यकता होने पर और भी सहायता मिल जाएगी, मेरी दुकान तेरे लिए हमेशा खुली रहेगी। महत्रानी जी ने कहा, सेठ जी तुम ना आते तो मैं अभी इसका काम तमाम कर देती, अब व्यवस्था हो गई तो काहे को मारूंगी। वो तो परिस्थिति के कारण ऐसा करना पड़ा, क्योंकि कमाने वाला नहीं रहा और खाने वाले 5-6 हैं, अब नहीं मारूंगी। संतोष की सांस लेता हुआ गुणसागर उसके के घर से जल्दी ही वापस लौट आया। उसके आश्चर्य का पार नहीं था। बहुत बहुत सोचने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पहले मैं चेतक के पास गया तो वो मर गया, बहनाई के घर आया तो बहनाई मर गया, आज बहनोई के घर पुत्र का जन्म हुआ तो चेतक के घर भी पुत्र का जन्म हुआ। भानेज को जन्म लेते देर नहीं हुई कि उसने ऐसी बात कही मानो कोई सिद्ध पुरुष अपने दिव्य ज्ञान में देखकर भविष्य कह रहा हो। यह सब सोचकर वो चकित और विस्मित हो रहा था, अतः वो बड़ी उत्कंठा लेकर घर आया। वो इस गुप्त रहस्य को जानना चाहता था, उलझी पहेली को सुलझाना चाहता था। ज्यों ही उसने घर में प्रवेश किया और नवजात बालक की दृष्टि उस पर पड़ी त्यों ही बालक ने पूछा, मामा लौट आए? मामा हाँ आ गया हूँ, पर यह तो बता कि तुझे इन सब बातों का पता कैसे चला? बालक, मामा सुनो, जिस चेतक से आप प्रश्न पूछने आए हो वही चेतक मैं हूँ। मरकर तुम्हारे भानेज के रूप में जन्मा हूँ और तुम्हारा बहनोई चेतक की पत्नी के उदर में उत्पन्न हुआ है। मामा, पर तुम यह सब रहस्य कैसे जानते हो? बालक, मामा चेतक के वशीभूत एक देव था, वही तुमसे यह बातचीत कर रहा है। मैं इस सद्य प्रसूत शिशु के गले पर बैठकर उत्तर दे रहा हूँ। चेतक जब मरने लगा तो उसने कहा, आगत व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कौन देगा? अब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तर दूंगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि चेतक ने 4 रूपा साधर्मी भाई के लिए खर्च किए तो 4 करोड़ का धन पाया, अर्थात चेतक का जीव तेरा भानेज बना। इसके विपरीत सेठ ने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया तो चेतक के घर जन्म लिया और दरिद्र अवस्था का सामना करना पड़ा। इन दोनों ने पूर्व भव में जो कुछ किया इसका फल अल्पकाल में ही इन दोनों को प्राप्त हो गया। भाई ने सोचा, मेरी माता ने जो कुछ भी कहा वो सत्य ही कहा था। बासा खाने का तात्पर्य बहुत पहले की कमाई, यहाँ खाना उनका कथन ही मर्म भरा है। जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण सत्य है। मैं करोड़पति होकर कुछ भी दान पुण्य नहीं करूँगा तो मेरी भी ऐसी ही दशा होगी जैसी मेरे बहनोई की हुई। पूर्व भव में मैंने कुछ किया तभी इस भव में मुझे अपार वैभव मिला है। अब भी मुझे अवश्य सुकृत करना है। आखिर अपनी बहन से विदाई लेकर वापस उज्जैन आ गया। माता को सारी बात बताई और कहा, माँ मैं आज से बासी भोजन नहीं करूँगा। अपने व मुनिराज ने मेरी जीवन की दिशा ही परिवर्तित कर दी, मेरी अंतर दृष्टि खोल दी, अज्ञान अंधकार दूर कर दिया। पुत्र जो अब सेठ बन चुका था उसने अपना जीवन दान पुण्य व धर्म ध्यान में व्यतीत करने लगा। इसे कहते हैं ताजा भोजन, ताजा जीवन। आप भी सुने समझे और दान देना सीखे, धर्म करें, पर्युषण नजदीक है सफल बनावें। रविवार यह प्रवचन एस्टरिस्क द 21st of August रविवार प्रवचन विषय 4 बोल बड़े अनमोल पार्ट 3 एस्टरिस्क समय 9:00 से 10:45 जैन स्थानक गुडमंडी जलंधर अत्यंत मार्मिक शास्त्रीय संयुक्तिक व्यवहारिक हृदयग्राही प्रवचन सुनने अवश्य पहुँचे। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।